సమస్తస్వరూపం రూపమతశ్చాగ్రజగురిపురిమాధురింగోష్ఠవాసిన్ రాధాకుండం గిరివరమహో రాధికా మాధవాసం ప్రాప్తో జస్వృతికృపయా శ్రీగురుం సమ్మతో వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానం పామనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో మహాబదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతి కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తే సప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ విశ్వభానుషితే దేవి ప్రణమామి హరి ఆదేవి కాకు భరగద గదయాచ్యవాచ జాతే నిపత్త భూవి దండవతో దుభట అశా ప్రసాదమబుధస్య కృత్వా గంధర్వితే గణే గణనం అంగశ్యామలిం శతాభిరవితో మందీకృతేందేవరం జద్దం జాగుదరూచితాం విదధతం పట్టంబరస్య బృందారణ్యనివాసినం హృదయశబ్దామాభిరామోదరం రాధాస్కందనివేశితో జలభుజం ధ్యాయేందాం భక్త్యా విహీనాపరాధలక్ష్యై చిత్తస్య కామాది తరంగమధ్యై కృపామయీం త్వాం శరణం ప్రపన్నా వందే నమస్తే చరణాయ గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయై సదాలయే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ యం ప్రప్రజంతమేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతరయాయు పుత్రేతి తన్మయతయా సర్వోభినేదు తం సర్వభూతరిజయం భునిమాన్ తవైవాస్మి న జీవామి త్వయా వినా ఇతి విజ్ఞాయ రాధే తన్మయమా. బృహద్ భగవతామృతం సనాతన గోస్వామి సరస్ సారస హంస విహంగా చారు గీత హితచేతసి ఏత్య హరిముపాసతే జత చిత్త హంస మృత విశోధిత మౌన. కల్ హమ్నే ఇస్కి వ్యాఖ్యా కుచ్ తక్ కీ. వో కహ రహే హై దేఖో తో యే సారస్ పక్షి నహీ హై బల్కి రస్ కో గ్రహణ కర్నే వాలా బ్రజ రస్ కో గ్రహణ కర్నే వాలా సౌ రస రసపూర్ణ యే కోయి ముని వైసే హి యే హంస నహీ హై యే తో పరమహంస హై. కైసే పరమహంస? మాయావాదీ అద్వైతవాదీ నహీ. యే కైసే? యే సుఖదేవ గోస్వామి జైసే ये लोग
परमहंस
कैसे भावुक हैं और रसिक हैं, साधारण नहीं. ऐसे तो चुप रहते हैं किंतु जब कथा कहते हैं तो कृष्ण की रसमयी कथाओं को व्यक्त करते हैं. और दूसरे दूसरे जो विहंगम है वे सारे चार ग्रीत गीत हितचेत कृष्ण के चारु बंसी गान से मोहन बंसी से आकृष्ट होकर कृष्ण के समीप आ जाते हैं निडर होकर हरिम उपासित। और ऐसे जो हरि उनके चित्त को जिन्होंने चुरा लिया है ऐसे हरि की निकट में आकर के उपासत उपासना करते हैं। यत चित्ता तीन विशेषण दिया यत चित्ता हंत मिलित दृशो अद्भुत मौन इसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। हम लोगों को भी कल हमने बतलाया था हम साधकों को भी साधकों में दो प्रकार के वैधि और रागानुगा यहाँ पर यह सब चीजें रागानुगा के लिए किंतु वैधि और रागानुगा के साधन में ऊपरी तल पर कोई भेद नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखम आत्मयोग सब में है। इति पुंसार्पिता कैसे पहले अर्पिता अर्पिता श्रवण अर्पित होकर के तब यदि श्रवण कीर्तन करता है तो वो भक्ति का अंग है। और जो श्रवण अर्पित पहले अपने नहीं कर लिया तब तो फिर वो साधन नहीं है भक्ति का साधन नहीं। अर्पित माने दो एक है श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सखम आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदन अंतिम। और एक होता है भक्ति के पहले आत्मनिवेदन जो वहां पर अंतिम आत्मनिवेदन है वो बहुत ऊपर है वहां पर सचमुच में आत्मा का निवेदन हो जाता है। और पहली स्थिति में अभी आत्मा का अनुभव ही नहीं है इसलिए अनुवेद तो नहीं वहां शरीर तन मन वचन इत्यादि का अंतिम निवेदन होगा राधा कृष्ण के जुगल के चरणों में और ये गुरु के चरणों में इनसे संपर्क अभी भगवान से संपर्क नहीं। तो अनकंडीशनल रूप में यदि कोई सरेंडर करता है और तब श्रवण कीर्तन इत्यादि करता है तब तो वो भक्ति में परिगणित होगा। और वो जो पांचों अंग हैं साधु संग्राम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धाए यदि पहले ही अर्पित नहीं हुआ गुरु के चरणों में आत्म समर्पण नहीं किया अपने को तो फिर सुन करके भी कुछ नहीं समझेगा उसके दिमाग खाक नहीं आएगा। और यदि विरुद्ध यदि भावनाएं होने लगी छह प्रकार वाली दृष्टि हंती नभिनंदती क्रुद्धते जाति नो हर्षम ये यदि छ हो गया गुरु को वैष्णव को देख करके मारना उनकी निंदा करना उनको द्वेष करना उनकी आदेश को नहीं पालन करना उनको देख करके उठना नहीं आसन से उनका अनुगमन नहीं करना और देख करके प्रसन्न नहीं हो जाते वैष्णव को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए आज हमारा जीवन का सौभाग्य है ऐसे गुरु और वैष्णव से तथा यह अपराध में आ जाता है वो अपराध पहले मालूम नहीं होता जो मैंने अपराध किया हृदय में कुछ मालूम होगा अधिक नहीं किंतु अपराध करने के कारण में उसका हृदय इतना वज्र जैसा कठोर हो जाएगा वो समझा जो मैंने जो कुछ किया ये ठीक किया आ रहा है समझ में। और वह दलील देगा प्रमाण देगा कि जो मैंने किया वो ठीक किया है गुरु जी ने किया है ये झूठ है ये ठीक नहीं हमने जो किया ये ठीक। इस तरह से वज्र से वज्र उसका हृदय होता चला जाएगा भक्ति के विरुद्ध चलता चलते भक्ति समूल उत्पादित कहे ये मैंने ठीक किया भक्ति उखड़ जाए कोई बात नहीं इसलिए इस चीजों से दूर रहना चाहिए। इनके लिए बतला रहे हैं तीन यत चित्ता साधक को कैसे होना चाहिए। यहाँ के ये साधक नहीं है, सारस हंस और दूसरे विहंगम साधक नहीं है, क्या है? परम सिद्ध है ये सब, किंतु अनुगमन तो करना है उन्हीं का, क्योंकि वो उपासक उपासना कर रहे हैं। वो उपासना क्या है? उपासना नहीं है, वो क्या है? समीप में आकर के कृष्ण की सेवा है वहाँ, और इस जगत में ये उपासना निकट आकर के अभी सीख रहे हैं, साधन कर रहे हैं। दोनों उपासना में अंतर है। वो सब कोटि कोटि जन्मों से सिद्ध हैं, साधन सिद्ध हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं जो साधन सिद्ध नहीं, स्वरूपगत की शक्ति के वो स्वरूप से काय विहित आदि हैं। वहां पर बिना राज के सिद्धि के वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए वहां पर जितने जतकिन की तृण गुल्म कीकट मुखम गोष्ठे समस्त संहितत सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम पर, जितने कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू भ्रौरे फेल लताएं गुल्म जो कुछ है कृष्ण के लीला के अनुकूल हैं, इसलिए उपासक का यहाँ पर अर्थ मत ये कर देना ये साधन की उपासना करते हैं, बल्कि वहां पर सिद्ध रूप में सेवा कर रहे हैं। कैसे? मानो उपस्थित होकर के कृष्ण के सामने, ये किस समय की बात कर रहे हैं? कृष्ण की प्रकट लीला के समय में कर रहे हैं। मानसिक कायिक और वाचिक, ये तीन रूप से तो हम गुरु के शरणागत हो ही सकते हैं, गुरु को अर्पण कर सकते हैं। तब हमारा क्या रह गया? अब विचार करने के लिए ये मैं क्या करूं नहीं करूं अब रह गया कि नहीं रहा? नहीं था। और मैं कृष्ण उनका पशु हो गया, अब वो जैसा इसको व्यवहार कर सकते हैं मैं कर सकते हैं, मैं उनका हो गया, ऐसा होना चाहिए। कायिक और वाचिक मन जो कुछ विचार करना चाहिए वो हरिनाम दीक्षा के पहले ही ये सब विचार कर लिया जाए। और ये देखते हैं कि ये गुरु जो नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो उनका संग भी छोड़ करके फिर शुद्ध नए रूप से उनका संग किया जाए। कैसे करते हैं? वेणुगुज के श्रवण से यत चित्त, अर्थात संपूर्ण से अपने मानसिक चित्त को समाहित कर दूसरे दूसरे वस्तुओं से सुनने में ही लगा दिया। पहले तो उन्होंने कृष्ण का श्रीअंग देखा, सौंदर्य देखा, सिर में देखा, ऊपर उठाकर पैर नहीं दिखाई पड़ा, कमर नहीं दिखाई पड़ी, केवल जब अलखे देख रहे हैं तो अलखे देखते रह गए, आंख वहीं पर सट गई। इसके बाद में मुस्कुराते हुए कृष्ण को देखा तो होठ पर मुस्कुराहट देकर के बस वहीं पर चिपक गई आंखें। कितना सुंदर मुखारविंद, होठ पर मधुर मरली लिए हुए मोहन बंसी बजा रहे हैं, स्मित हास्य कर रहे हैं, आंखें किधर हैं? बंकिम दृष्टि से किसी को निहार रही हैं, खोज रही हैं, देख करके बस वहीं पर अटक गई। थोड़ी देर के बाद देखा वस्तक्षल पर नजर आई, देखा जो विशाल वस्तक्षल अत्यंत सुंदर, वनमाला उसमें लटकते हुए देखा। नीचे और गए तो कमर देखा बहुत पतली, बहुत ही सुंदर, देख करके वो एकदम छवि निहारने में रह गया, उनकी आंखें रह गई। इसके बाद में देखा जो पैरों पैरों पर रह करके व्यतस्त पाद कमलम ललिता त्रिभंगी सौभाग्यमंश बिरली चितकेश पाद, एक पैर पर दूसरा पैर रख करके त्रिभंग और ललित रूप में खड़े हैं, बस इसकी शोभा निहारते हुए। और इधर थोड़ी देर के बाद में भौरों को देखा, ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, उन्होंने उनकी नजर पड़ी चरणों में, चरण कमलों को देखकर उसके नख की छटाओं को देख करके एकदम दी। अब वो पूरा दर्शन करना चाहते हैं, तब उसने क्या किया? आंख को मिली तब दृशो, आंखों को बंद करके पूरे को एक साथ में संयत चित्त, जतक चित्ता, संयत चित्त को चारों तरफ से एकत्र करके मन के अंदर में लेकर के कृष्ण के सर्वांगों को देखने लगे। जतक चित्ता धृत मौना, अपने आप मौन हो, सब कामों से उपरस हो गए संपूर्ण रूप से। ये साधक ऐसा होना चाहिए, दत्त गुरु जी के चरणों में तो कम से कम ऐसा पहले हो, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों एक ही, वहीं से अभ्यास होगा। और ऐसा अभ्यास यही नहीं किया तो वहां पर पहुंच नहीं जाएगा, पहले तो जड़ ही नहीं पहुंचे और फल नहीं अचाना चाहिए, वो भजन कदापि कोटि कोटि वर्षों में भी नहीं होगा, केवल अपराध हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं, देखो तो ये पक्षी होकर के ऐसे कर रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर देख करके कह रहे हैं, पशु पाछी झूरे पाषण अभी डरे सुनी जा रहा था मन परेशान, तो हम विचार नहीं करते हैं, इतने पाषंड हो गए हैं, अपराध इतना भयंकर हो गया है जो हमने अपराध को भी एक मान सम्मान बना लिया, समझ में नहीं आता। सच है मैंने बहुत अच्छा, दुर्भाग्य आदमी साधकों को इस सब चीजों से बचना चाहिए। वैष्णव के लिए नरोत्तम ठाकुर ने लिखा है, तीर्थों में जाने का जो गुण है वो हमने सुना है, वैष्णवों के पादोदक में ये सब चीजें हैं असल में, जो कि कोटि कोटि वर्षों तक तीर्थों का सेवन करने से नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि जो वृंदावन धाम की भी सेवा नहीं करने से जो नहीं होगी, जो वृंदावन रसिक जो भावुक जो भक्त हैं उनके चरणों में मिलेगा। वृंदावन को हम क्या समझेंगे, वृंदावन हमारे ऊपर में कृपा नहीं करेंगे, गोवर्धन नहीं करेंगे, हम गोवर्धन में देखते हैं कि लाखों लोग वहां पर एक एक साथ में एक एक आठ एक एक सौ आठ एक हजार आठ पत्थर लेकर के एक रख के दूसरे रखते हैं और परिक्रमा करते दंडोत परिक्रमा करते छह वर्ष में पूरा करते हैं। उनको देखते हैं कोई तत्व ज्ञान नहीं, राधा जी से संबंध नहीं, गोवर्धन की कृपा किसको कहते हैं उनको पता नहीं, कहते कि हमारी आंख ठीक हो जाए, हमारे पेट में दर्द है ये ठीक हो जाए, हमारे हमको दो ताला बिल्डिंग हो जाए। बड़े बड़े संतों को भी हम देखते हैं, बड़े बड़े मालाएं लेकर के तुलसी की इतनी बड़ी बड़ी, ये सब भक्ति का भाव कहां। इसलिए वैष्णव के चरणों में ये सब हो सकता है। नरोत्तम ठाकुर जी का कीर्तन जरा देखना, वैष्णव की वैष्णव चरण संपत्ति की क्या है,
वैष्णव चरण
नहीं अप्रारंभ का गौरी गीति कुछ है उसमें, वैष्णव चरण संपद संपद हाँ हाँ ऐसा ठाकुर वैष्णव पद अवनी संपद सुसंपद तात्पर्य याद नहीं, सुनो भाई भैया एक मन ठाकुर वैष्णव पद अवनी सुसंपद। सुनो भाई कौन कर, हम नहीं कह रहे हैं, नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे हमारी बात मत सुनो, उनकी बात सुनो, यदि कल्याण चाहता है तो सुनो भाई भैया एक मन से सभी लोग सुनो, आश्रय ले या भजे कृष्ण तारे नहीं थे। ऐसे वैष्णव का कोई यदि आश्रय लेकर के भजन करता है, ऐसे गुरु का वैष्णव का कृष्ण उसे नहीं छोड़ सकते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, जिसकी शरणागति हुई है कृष्ण के प्रति उनकी सुनेंगे, वैष्णव के चरणों में भी जिनकी शरणागति है उसकी तो सुन लेंगे, हमारी अभी शरणागति है इसलिए नहीं सुनेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के प्रथम पद में ही उन्होंने कहा है, क्या सौरंग शरणागति होई बे जहार तहार प्रार्थना सुने। अरे भाई इस पर निश्चित रूप में विचार करके देखो, इनको ग्रहण करो, ये सब शिक्षाएं ऐसे मालूम होता है जो सुबह ध्यान नहीं देते, इस पर तो ध्यान तो जरा तो कहते हैं 800 मोरे अकारण, जिन्होंने ऐसे गुरु वैष्णवों का दीक्षा लेने का अभिनय किया, शिक्षा लेने का अभिनय किया, उन्होंने बेटे की तरह में पालन पोषण करके और ये सब किया, और उनका आश्रय लेकर के भजन नहीं करते हैं, स्वतंत्र होकर के करते हैं, और अभी कुछ जानते भी नहीं हैं, उनका क्या होगा? आर सब मोरे अकार, जो तो भजन कर ले, गिरिराज जी की परिक्रमा कर ले, जमुना का स्नान कर ले, सब तीर्थ में भी जाए, रोज रोज भागवत चैतन्य चैतामृत भी पढ़ ले, नहीं होगा। आर सब मोरे अकार, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर के होने है बलवंत, और कोई भी बलवान नहीं है इस चीज को देने के लिए। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु, आर नहीं भूषण रंत, कोई दूसरा भूषण नहीं, पढ़ते हैं सुनते हैं भी पालन नहीं करते। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराने, तीर्थ जल पवित्र है ये पुराणों में लिखा है। से सब भक्ति प्रवंचन, ये किसके लिए है? ये मूढ़ लोगों को प्रवंचन ठगने के लिए है, जो अंततः थोड़ा सा हृदय निर्मल हो वैष्णव के पास में जाए, इसके लिए केवल उनको प्रवंचन है। भक्ति जिसको भक्ति है वैष्णव है यथार्थ में, उनके पास में यदि कोई जाए तो ये हृदय को पवित्र कर देंगे जल्दी। हजार बार जमुना में गंगा में स्नान करने से चित्त पवित्र नहीं होगा, किंतु वैष्णव के पास निकट निकट जाने से ही अपने आप पवित्र होकर के, पवित्र माने क्या? कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण सेवा की वृत्ति को दे देंगे, वासना को जन्म दे देते हैं। वैष्णव पदों तक सम नहीं यही सब जाते हैं वांछित पूरण, जो कुछ चाहेंगे वो वैष्णव उसको पूरा कर देगा। वैष्णव संगे थे मौन आनंदित अनुखन सदा लय कृष्ण, सदा है कृष्ण परसंग, कृष्ण का प्रसंग चलता है, जैसे अभी हम लोगों का चल रहा है। सनातन गोस्वामी हम लोगों की सभा में बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज जी अपनी मैया को बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बोल रहे हैं, इतना जितना हम विस्तृत करके बोल रहे हैं, या सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले होंगे, उन्होंने श्लोक आकार में बस कह दिया, सात दिन में समय कहां, और हम लोग एक ही श्लोक को 10 दिन पाठ कर रहे हैं, और कितने और सब शास्त्रों से विचार लेकर के उसको पुष्ट कर रहे हैं। दीन नरोत्तम कांधे हिया धर्ज नहीं बांधे, मोर दशा के न हो भंग, हमारी दशा ऐसी क्यों हो गई? तो करें मिलित दृशो, आंख किस लिए बंद किया? क्योंकि एक साथ में सबका दर्शन नहीं कर सकते, और इतना सुंदर रूप आकृष्ट हो गए हैं, चित्त को चुरा ली है। क्या कृष्ण का यह मनोहर रूप और मोहन बंसी की ध्वनि, मोहन की बंसी ध्वनि कैसी है? विषा मित्र विषा अमृत एकत्र मिलन, विष है कि अमृत है मैं नहीं समझ सकी, हम तो समझती हैं कभी सोचती हैं तो ये विष है, और कभी जब विचार करती हैं तो हम देखते हैं कि यह अमृत है, किंतु विचार करने पर ऐसा ही मालूम होता है कि यह विष ही है। अर्थात केवल आंखों के लिए यहां पर कहा गया मिलित दृश्यो, किंतु उसका उपलक्षण है किसका? समस्त सारी इंद्रियां कृष्ण के चरणों में लग गई, उनके चिंतन में मन लग गया, आंखें उनका रूप निहारने में आंख बंद करके सब पूरा रूप को देख रहे हैं, कान उनकी बंसी ध्वनि को सुन रहा है, हृदय उस पर विचार कर करके कैसा हो रहा है, गदगद होकर के द्रवित हो रहा है, हाथ क्या कर रहे हैं अंग भंगी, पैर क्या ठुम कर रहे हैं, सभी जितनी इंद्रियां हैं सब लग गई। अरे मयूर तक नाचने लगता है, बछड़े कान खड़े करके जैसे कि पैसे अवस्था में रह जाते हैं, किंतु हम लोगों का ऐसा लोभ भी नहीं होता, इसलिए ताहते जानहो अपराधे रपरंचु कृष्ण नाम बीजता है। अरे जो हो गया हो गया, अब से नहीं करेंगे हम, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, प्रतिज्ञा तो कर ही सकते हैं, अब आर नारे बाप जगाई मधाई बोले आर नारे बाप दोनों कानून, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। भीत मौना समस्त इंद्रियां निर्भर करती है इस लूली जवान के ऊपर। कंट्रोल में यदि इसको यही रखा जाए तो जब जैसा तैसा बोल करके बखेड़ा खड़ा कर। द्रौपदी ने कह दिया बस इतना ही, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, बस महाभारत लग गया। इसी तरह से सीता जी ने लक्ष्मण जी को कह दिया तेरी नियत खराब है, तू हमको भगाना चाहता है, बस इसी लूली जीव के कारण पूरा रामायण हो गया। यदि लक्ष्मण जी नहीं जाते सीता जी के कहने से मारीच के पास में, तो रावण का सीता का हरण नहीं होता, वो लड़ाई भी नहीं। बस इसके लिए इसको कंट्रोल में रखो, यदि कुछ ऐसी ही बात हो जाए तो भी संजत हो, मत जुबान हिलाओ, पानी पी लो, उसमें भगवान का स्मरण करो, गुरु जी से प्रार्थना करो। यदि किसी कारण से ये जिन्होंने इसने जरी कुछ गड़बड़ भी कर दी, थोड़ी देर अनुताप करो, हाँ है मैंने ये बुरा किया, फिर से क्षमा मांग लो। किंतु नहीं मांगता, यही अपराध का भयंकर एक है। जब सांप बीज काटता है तो कष्ट नहीं होता, क्या होता है धीरे 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 उसका सेंस खत्म होने लगता है, अज्ञान आच्छादन करने लगता है, बस मर जाता है, बड़े सुख से मरता है। बीज खाने से आदमी छटपट करेगा मरेगा, और उस समय में धीरे धीरे आंख नहीं खुलेगी, आंख ऐसे रह जाएगी, बस रह जाएगी। ऐसे ही अपराध बड़ा भयंकर, इसे बचो, वाक संयम करो। यदि इनसे बचना चाहते हो वाक संयम करो, जब जैसे चटपटी बात आ गई कह दिया ऐसे नहीं। वाक संयम कैसे हुआ, यदि सत्समय जीवा को भगवान की लीला कथाओं में लगाओ, कान को लगाओ भगवान की कथाओं को सुनने में और जीवा से उसका वर्णन करने में, अपने आप संयमित हो जाए। लीला चिंतन में उसको लगाओ, वृंदावन में जो कुछ देखेंगे हम उसकी स्मृति क्या होगी, कृष्ण लीला की उद्दीपना होगी। एक लता को देख रहे हैं, एक परिक्रमा में जा रहे हैं, देखा एक लता समाल का वृक्ष या किसी चीज का वृक्ष है, उसको लेपित करके ऊपर चली गई और खिल रही है, पुष्प खिले हुए, कहा कि देखो तो समाल के ऊपर में चढ़ी, बड़ी मुस्कुरा रही है। देखो तो इसका सौभाग्य, बस खड़ा हो गया, चिंतन करते करते उसमें डूब गया। तब वो कहेगा क्या, वन लता सरव आत्मनि विष्णु व्यंजयन, बस उसको याद आ। देखा जी गुफियां तो ऐसे ही गा रही है, बस लगा चिंतन करने, वृंदावन में ऐसी कोई चीज नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग तरु लता गुल्म, जिसको देखने से कृष्ण लीला की उद्दीपना नहीं होती। किंतु जो अभिमानी हैं, दुर्मद हैं, कृष्ण भक्ति से संबंध नहीं, जिन्होंने वैष्णव की सेवा नहीं, उन लोगों को नहीं, उनको क्या होगा, उनको क्रोध दंभ पाखंड यही उसी का, उसी की उद्दीपना भक्ति की नहीं होगी। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, बस उसी में रह जाएगा। ये मैं इसकी व्याख्या तो नहीं मैं कह रहा हूं, अब सावधान होने के लिए कैसे इन चीजों का रस साधन होगा, इसलिए बतला रहा। इंद्रियां बड़ी बलवान है, उसमें जीवा सबसे अधिक, जीवा को कंट्रोल करने से बाकी सब संयत चित्त हो जा सकता है। अथवा कह रहे हैं हरिमोपास जत चित्ता, हरि माने सब लोगों के मन को हरण करने वाले हैं, उनको नहीं देखा कृष्ण को कोई बात नहीं, तो लीला कथा में उनका रूप तो श्रवण करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बस्तक चले कौशुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करथले वेणु कड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी श्री परिवेष्टयतो विजयते गोपाल चूना। कितना सुन, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत। कितने सुंदर जी, इसका स्मरण करने से माया कहां से आएगी? किंतु दुर्भाग्य हम बस हम लोग साधन भजन करते हुए भी इन चीजों को नहीं। इसलिए ये पक्षी कृष्ण का यदि रूप नहीं भी देखा तो इनके वर्णनों से यदि वर्णन करें, इन श्लोकों को याद यदि कर लें और इसका भजन करते करते इसका स्मरण करें, फुल्लेन्दिवर कांतिमिन्दु वदनं बरहावतंसं प्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार अम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चितनं गोगोपसंहापितं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगं भजे। कितने सुंदर सुंदर ये, बस आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 कर रहे हैं और ये सब का चिंतन करें, मन वहां पर नहीं है, मन कृष्ण के पास। ये सब भजन के तरीके हैं। ये क्या कर रहे हैं, मानो इसी तरह से एकाग्र चित्त करके आंखों को बंद करके मौन हो करके कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। वो तो सिद्ध हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, उद्दीपना होनी चाहिए। उद्दीपना होगी कैसे, वैष्णव की सेवा करेंगे तब तो, वो भी कैसा वैष्णव होना चाहिए, इस रंग में रंगा हुआ हो रसिक वैष्णव, तब तो उनके संग में इन चीजों को सुनते सुनते एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दस दिन जरूर होगा। ये जैसे वो है ना श्रीमद्भागवत का, दुख कष्ट आने पर उसको भगवान की कृपा समझते हैं, सत्य अनुकंपा। अंतिम लाइन क्या है, दाय भाग। यदि इस प्रकार से यदि वो जीवित रहता ऐसा करता हुआ जीवन में यदि चलता हरि कथाओं का प्रणाम करता हुआ, उस पर जो हरि कथा कह रहा है उसको प्रणाम करते हुए सत्य में भगवत चिंतन करता हुआ जाए, तब तो वो दाय भाग उत्तराधिकारी हो गया। किस चीज का, मुक्ति पदे स। क्या मुक्ति पदे, मुक्ति जिनके पद में है ऐसे प्रेमा भक्ति के का उत्तराधिकारी हो जाता है, कृष्ण प्रेम का उत्तराधिकारी हो जाता है। मुक्ति का नहीं, मुक्ति पदे सुन हमारे कौन से सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्हें श्लोक के बदले में भक्ति पदे लिख दिया महाप्रभु जी ने, ठीक है तुम्हारी निष्ठा बड़ी सुंदर है किंतु इसको बदलने की जरूरत नहीं है, मुक्ति पदे ही रहने दो तो ठीक है। पदे माने भक्ति पदे, जो मुक्ति अवस्थित है, नहीं मुक्ति जिसके चरण में स्थित है वो भक्ति प्रेमा भक्ति उसको हो जाती है, गौण के रूप में लिया सरोवर के समीप आ जाते हैं। कौन ये सारे पक्षी, सारस हंस विहंग इत्यादि, ये परम मिलित होकर के धृत मौना बतलाया, अब उसका अर्थ करते हैं, अमौना कर दिया, अमौना करके क्या लिया, बाचाल बने, क्या कुड़ूर कुड़ूर कर रहे हैं, मैंने राधा कृष्ण करने लगे मानो एक साथ में राधा कृष्ण के कोटि कोटि नुपुर झंकृत हो उठे, ऐसे क्रांग 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 वो जैसे करते हैं ऐसे ये हंस सारस सब करते हैं, ऐसा ये सभी मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं और तर रहे हैं मानो नृत्य कर रहे हैं, इसलिए अ लगा करके उसका अर्थ ऐसा कर लिया। इसलिए यहां पर हंत हंत शब्द से यह ध्वनि निकलती है। देखो तो ये मौन नहीं हो रहे, इनका चित्त संयत नहीं, ये आंखों को बंद की है, नहीं 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 हंत हंत, अरे ये ऐसे नहीं, कैसे हो रहे हैं, ये तो बड़े मुखर हो रहे हैं, कृष्ण लीला के कथा गान में ये प्रमत्त हो रहे हैं एक दूसरे से, दूसरे ये नेत्र खुले हुए विस्तारित नेत्रों से इनके पलके नहीं पड़ती जैसे गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर रूप और देखने के लिए आंख वो भी दो और उसमें भी पलके उसमें भी अश्रु इत्यादि, और ब्रह्मा की निंदा करते हैं तो इन्होंने आंखें एकदम विस्फारित कर ली, पलके नहीं पड़ी। और अश्वों को भी आना उद्गम बंद कर दिया और एक तक से निहार रहे। ये हम तो शब्द का ले रहे हैं सनातन गोस्वामी, हम तो नहीं नहीं ये मौन नहीं रह सकते। सुख पक्षी इत्यादि देकर के मौन कैसे रह सकते हैं? क्या करेंगे? उठिए, सूर्य उदित होने जा रहा है, उसकी लालिमा आकाश को रंग कर दिया, अब वो रात नहीं रही। आप कैसे हैं? नंद चित्त दुग्ध सुंधि सुधाकर, माने क्या? नंद चित्त दुग्ध सिंधु के सुधाकर, चंद्रमा है। कौन? कृष्ण। अरे नंद बाबा आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है जैसे ऐसे नहीं। नंद बाबा आने वाले, देखे कि हमारा बेटा कहाँ गया और रास्ते में मिल गए, इसलिए रास्ते से मत जाना, यमुना के किनारे मत जाना, बल पथ से जाओ। बहुत इसकी गंभीर बातें हैं। हंत तो ये सुख पक्षी, मैंने ये सब परस्पर परस्पर, वो राधा जी को जगा रहे हैं, ये इसको जगा रहे हैं। राधा कृष्ण के आते ही बस किसी ने कहा माँ प्रभु जी गए कौन वन में? बहुला वन में, बहुला वन। सुख और सारी दोनों डालियों पर बैठ रहे हैं। सुख ने कहा कृष्ण मेरे बड़े सुंदर हैं। मैना ने कहा तो उसने कहा यदि राधा जी यदि बाएं हैं तो नहीं तो सुंदर नहीं, निराकार निर्विशेष। कृष्ण ने कहा ये हमारे कृष्ण नीलमणि हैं, तो कहते हैं नीलमणि में यदि राधा जी गोरी की यदि वो सौंदर्य उसमें नहीं आभा नहीं गई तो वो बेकार का है, केवल काला ही है। इसी तरह से जितनी उपमा वो देता जाता है और इसका खंडन करते हुए सब महाप्रभु जी चकित होकर के सुन रहे हैं। महाप्रभु जी पशुओं की पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, बस एकदम मुग्ध हो गए। सुख ने कहा जी हमारा कृष्ण ने तो गिरवर का धारण किया था, इसलिए कि राधा जी ने बाएं तरफ से उठा लिया, नहीं तो कृष्ण क्या कर सकता था। कृष्ण ने कहा, उसने सुख ने कहा हाँ मोर पंखा है, अरे मोर पंखा है ठीक है, किंतु वो बाएं तरफ में झुका हुआ और हमारी राधा जी का नाम उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हमारा चूड़ा बाएं तो सारी कहती, इसलिए कि राधा जी बाएं तरफ उनका चरण है इसलिए उस पर गिरना चाहता है। महाप्रभु सुन करके गदगद हो गए, विभोर हो गए, जाना रास्ता भूल गए और वहीं पर एकदम हृदय रोमांच हुआ है, अष्टसात्विक विकार होने लग गए। चैतन्य चरितामृत में इसका कुछ प्रसंग दिया गया। जब हम वृंदावन में जाएंगे ऐसी उद्दीपना तो होनी चाहिए। तो इसलिए कहते नहीं धृतमौना न अधृतमौना, अधृत अमौना अ लगाओ, क्यों? हंत में न जो है हंत के पास। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ना, माने क्या? आपने खूब भालो व्यक्ति, माने कि महा खराब लोग। आप बहुत बड़े पंडित हैं, हाय हाय बड़ी बड़ी भारी पंडित है, मतलब आप मूर्ख हैं। तो इसलिए इस ध्वनि को सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। वेणुनाद से उनका चित्त हित हो गया, मैंने हरण किया दिया गया, उनका चित्त ही नहीं है तो वो आंख कैसे बंद करेंगे? नहीं कर सकते, मौन कैसे रह सकते? उनका हृदय ही वहां देंगे, बेबस हैं, बिना हृदय के वो हैं। इसे समस्त इंद्रिया ऐसे ही काम कर रही है, शांतिपूर्वक यत चित्त होकर के क्या रहे? नहीं, कृष्ण का रूप दर्शन करते ही एकदम कृष्ण का रूप गुणगान करने लगे और आंखों को बंद नहीं किया, आंखों से कृष्ण का रूप ऊपर से नीचे तक, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, संयत चित्त नहीं रख सके। हृदय में लाखों प्रकार की सेवा की भावना जगने लग गई। आ रहा है समझ में? इसीलिए क्या काकू 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 नहीं कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, इसीलिए तो काकू काकू कह रहे हैं, इसका अर्थ ये ले रहे हैं। काकू नहीं कर रहे इसीलिए क्या काकू काकू करते छे ना, किंतु अंतरे वो बाहिरे विकार जात लक्षण प्रतीत ऐसा हो रहा है। विपरीत व्याख्या में तारा जत चित्त ना हैया प्रमत्त चित्ते मिलित इदृश ना हैया, आंखों को विस्फारित नेत्रों से मौन नहीं होकर के परम वाचाल होकर के आंख को बंद नहीं करके बल्कि विस्फारित नेत्रों से सौंदर्य सिद्धु का पान करने लगे और नेत्र चषक के द्वारा नेत्र के प्याले से कृष्ण का रूप छक छक कर पीने लगे पान करने लगे। और आंसू नहीं, ये प्रेम आंसू नहीं, ये सौंदर्य सिंधु इतना पान कर रहे हैं कि वो नीचे जगह नहीं है, जैसे ग्लास में पानी के लिए जगह न हो और पानी देते जाओ तो वो उथल करके गिरता है, ऐसे इनके हृदय सिंधु से ये क्रमशः बाहर आ रहे हैं। किस लिए? जगत को पवित्र करने के लिए, प्लावित प्रेम से प्लावित करने के लिए। किंतु तथापि पान से विरत नहीं हो रहे, पान ही लगातार, आंखों से पान कर रहे हैं, कानों से पान कर रहे हैं, मन के द्वारा सबसे पान कर रहे हैं। हम लोग इसी का साधन करेंगे, साधन इसका करना है, संसार का समस्त कार्य भूल जाएं। सूत्र सिद्धांत यह है, गुरुगारी भजिए कृष्ण सब काज विसारी, सब कामों को विसार करके भूल करके। यदि मान लिया कि कोई काम खराब हो जाता है तो क्या खराब हुआ, यदि कृष्ण का भजन हो गया, और यदि कृष्ण का भजन नहीं हुआ सारे काम हो गए तो क्या हुआ, शून्य ग्रंथि अंचल बंधन, गांठ बांधा उसमें कुछ है नहीं। हमने सोचा जो हीरा जवाहरात बांधा, किंतु देखा तो खोला तो कुछ नहीं। ऐसे ही संसार का सब काम पूरा होने पर भी कृष्ण भजन नहीं हुआ, और कृष्ण भजन में ये सब चीजें नहीं हुई तो जीवन क्या है, अंधकार में बेकार शून्य। अतएव धृत मोहिमा नहीं न होकर के, अर्थात मौन धारण नहीं करके उच्च कंठ से राधा कृष्ण का गुणगान करने लग गए। वो स्वजाति पक्षियों को बुला लिया, जैसे एक कौआ काव काव करेगा तो 10, 20, 50, 100, 1000 एक बंदर ने किलकारी छोड़ी, छोटा सा बच्चा किसी ने पकड़ लिया और वैसा चेचे किया और सब ऐसे अपने जो अपने परिवार के सब लोगों को बुला करके और परम हल्लादित होकर के कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे, वो भी करने लगे। इस प्रकार अंतर और बाह्य सब प्रकार से विकार प्राप्त होकर के अष्ट सात्विक भाव अनुभव संचारी, इसमें कुछ बाहरी है कुछ भीतरी है, आंखों का रोना और अश्रु आना ये अष्ट सात्विक भाव है, किंतु भीतर में यदि नहीं होगा तो कैसे होगा। सत्व से होता है, शुद्ध सत्व से, इसलिए इसका नाम अनुभव, जो भाव निरंतर उठ करके समुद्र में लहर की भांति और स्थायी भाव के वो चलते हैं, इसलिए संचारी भाव है, संचरण करते हैं कहाँ, स्थायी भाव जैसे वात्सल्य रस है, वात्सल्य तरफ आकर के उसके पुष्ट करके उसमें नाना प्रकार की तरंगे आती, आंखों से आंसू पुलक गदगद ये सब हो जाते, उसी प्रकार से मधुर रस में सख्त रस में ये सब होगा। कभी कभी तुम्हारी भांति अभंगुर अनंग रस रंजित अपांग लक्ष्मी से रस सिंधु का पान कर रही है, आंखों से नेत्रों से कृष्ण कौन है, अखिल रसामित, और उसमें रसिंधु में एक धारा है, एक अंश है जिसका नाम है कौन सा, अनंग रस, वह केवल गोपियों के साथ नहीं होगा, उस अनंग रस का पान अपांग भंगी से अपने कटाक्ष पूर्व तिरछी नजरों से उसका ये पान कर रहे हैं, कौन, ये आरोपित कर रही हैं, यह बात ठीक है क्या? ये जो सारस हंस इत्यादि हैं, इनमें कृष्ण के प्रति अनुराग है, किंतु जितना वर्णन कर रहे हैं उतना है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता जो है कि नहीं, हो भी सकता है, हम जितना सोचते उससे भी अधिक हो सकता है, किंतु ऊपर से ऐसा ही मालूम होता है कि गोपियों की जैसे तुलना में नहीं हो सकता। गोपियां अनुपम है, अनुद्ध समान, उनके समान कोई नहीं है जिनका प्रेम है इतना। तभी ये अपने भावों को उन पर आरोप करते हैं, साधु ऐसे ही होता है, अपने अच्छे भावों को दूसरों पर आरोप करके उसे सबको साधु मानता है। और दुष्ट लोग क्या होते हैं, वो अपने भावों का आरोप करके साधुओं को भी अपना जैसा निम्नगामी समझते हैं। यही दोनों में अंतर है। आज यहीं तक रहे, काफी हो गया। आप लोग इन चीजों को अनुधावन करेंगे, इस रस में अंततः लोभ थोड़ा सा हो, इसके लिए ये जो चीज हमने उदाहरण सनातन गोस्वामी का दिया, इसको पालन करने की चेष्टा करें। धिक धिक अपने को कहें कि धिकार है हमें धिकार है, इसमें रुचि नहीं होती। ऐसा वैष्णव संघ को छोड़कर हम इधर उधर जा रहे हैं, दीनता नीचे। जब गोपियों को आ रही है, कहते हैं कि हमारा कर्म ठीक नहीं है, पूर्व जन्म में ऐसा कोई काम नहीं किया था, अभी जन्म में हम समझ करके ये पक्षी ने, बंसी ने, बेणु ने कौन सी तपस्या की, वैसी तपस्या करके बांस में जन्म लेंगी, हिरण के घर में जन्म लेंगी, दूसरे दिवस जन्म लेकर के स्वच्छंद रूप से कृष्ण का हम दर्शन करेंगे। और हम लोगों का अधिकार है, ये हम लोगों का हृदय में ऐसी भावना नहीं आती। वंशा कल्पतरु है।